8,000 रुपये से स्टार्ट किया अपना करियर और आज ना ही सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी का मैं मालिक हूँ बट अश्नीर ग्रोवर के साथ थर्ड यूनिकॉर्न में एक कोफाउंडर भी हूँ।
हेलो एंड वेलकम टू द जोश टॉक्स पॉडकास्ट वेयर वी स्पीक टू इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया। आई एम योर होस्ट सिद्धांत नाग एंड टुडे वी आर स्पीकिंग टू अ सीरियल एंटरप्रेन्योर असीम घावरी। मोस्ट रिसेंटली असीम हैज कोफाउंडेड द थर्ड यूनिकॉर्न एंड बिफोर दैट has founded ventures such as BlockTech Brew, Hungryville, and Code Brew Labs. Hello Asim, welcome to the Josh Talks podcast. There's a very popular story that we've heard that you sent across a cold DM to Ashneer Grover and that led to you becoming a co-founder with him. Can you tell us how true this is?
To logo ko lagta hai sirf ek cold DM ne meri zindagi badal di. But ye kahani sirf ek cold DM ki nahi hai, ye kahani usse bahut alag hai. ये एक कहानी है वो 10 साल की कड़ी मेहनत की जो मैंने स्टार्ट किया जब मैं सिर्फ 12वीं क्लास में था। तो पहला मेरा वेंचर जो मैंने स्टार्ट किया वो था 12वीं क्लास में जब मैं मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपये थे, वो भी जो मेरे पेरेंट्स या रिश्तेदारों ने मुझे दिए थे। तब मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं उन 8,000 रुपये से क्या स्टार्ट कर सकता हूँ। तब मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी, जुनून, कि कुछ अपना कर दिखाना है, कुछ अपना कुछ अचीव करना है। तब मेरे हाथ में ना कोई फंडिंग थी, ना कोई डिग्री थी, ना कोई रिसोर्स था, बट एक ही सिर्फ एक ही जज्बा था कि मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ।
इट सीम्ड एज़ दो यू हैड ऑलरेडी सेट योरसेल्फ ऑन द पाथ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एज अ टीनेजर। हाउ डिड यू कम टू दिस डिसीजन?
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ जहाँ पे हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो ये जब चीज़ें देख के मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा अगर मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं वो सोचने लगा, अपने आसपास देखने लगा, तो मुझे लगा अगर मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो बिज़नेस ही करना पड़ेगा। बट मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया था, तो मैं ना मेरे पास डिग्री थी, ना मेरे पास बिज़नेस की नॉलेज थी, ना मेरे पास कोई गॉडफादर था इंडस्ट्री में। मेरे पास क्या था? सिर्फ 8,000 रुपये थे जो कि मेरे रिश्तेदारों ने कई फेस्टिवल्स पे मुझे दिए थे। मेरे पास वो 8,000 थे और सिर्फ एक और चीज़ थी, वो था जज्बा कुछ कर दिखाने का। वैसे तो हर मिडिल क्लास फैमिली में माँ बाप का सपना होता है उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कोई सीए बनेगा। वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे इंजीनियरिंग में डाला, +1 +2 में नॉन मेडिकल दिलाया सो दैट मैं एक बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन कर सकूं। IIT का सपना देखा, NIT का सपना देखा, बट मेरे सपने बिल्कुल डिफरेंट थे। मुझे ये बहुत पहले ही क्लियर हो गया था अगर मैं इंजीनियर भी बन गया तो मैं कितना कमा लूँगा, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, बट मेरी एस्पिरेशंस, मेरे ड्रीम्स इससे कई बड़े थे। तब मेरे माइंड में आइडिया आया कि मुझे जो करना है वो मुझे आज ही शुरू करना पड़ेगा, जितनी जल्दी शुरू करूँगा उतनी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा। तो मैंने पहला अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जब मैं 12th class में था, उसका नाम था हंगरीविले। वो बेसिकली मॉडर्न लैंग्वेज में उसे कार्ट कहेंगे बट हिंदी में आप कह सकते हैं मैंने अपना पहला बिज़नेस एक ठेला खोला जिसपे मैं एक बर्गर, हॉट डॉग, सैंडविचेस ये बेचने स्टार्ट किए। और क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपये थे तो मैं एक छोटा सा स्टैंड ही लगा पाया, एक पूरा ठेला भी नहीं अफोर्ड कर पाया, बट कहीं ना कहीं से मेरे सपने की शुरुआत हो गई थी जब मैंने वो एक स्टैंड खोला जिसपे मैं हॉट डॉग, बर्गर या सैंडविचेस बेचना स्टार्ट कर दिया।
असीम जी, जब आपने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो आपने फास्ट फूड क्यों चुना? क्या आपके पेरेंट्स इस डिसीजन से खुश थे और क्या आपको वो सपोर्ट मिला अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से?
मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, मेरे पास कोई फंडिंग है या नहीं है, या मेरे पास कोई डिग्री है या नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया कि आज मेरे पास क्या है और इतने रिसोर्सेज में मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरी सलाह सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए यही है कि अपना फोकस उस पर डालिए कि आपके पास आज क्या है। तब मुझे 8,000 रुपये में ये सोचना मैंने स्टार्ट कर दिया मैं अब क्या स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ सोचे बट सिर्फ 8,000 रुपये जो थे वो उससे क्या स्टार्ट हो सकता है, उससे एक छोटा बिज़नेस ही स्टार्ट हो सकता था। और अब फूड एक ऐसा बिज़नेस था जिसमें मैं YouTube से या ऑनलाइन कुछ लर्न करके कुछ रेसिपीज़ बना सकता था और उसको कहीं जाके बेच सकता था। तो मुझे लगा कि यहाँ से एक मैं बिज़नेस की सिंपल शुरुआत कर सकता हूँ। तो मैंने 8,000 रुपये लिए, मैं सीधा चंडीगढ़ से लुधियाना गया और बिल्कुल एक कार्ड का डिज़ाइन बनवाया और उस कार्ड को लेके चंडीगढ़ आ गया। तो पहला कार्ड मैंने अपने बिल्कुल घर के सामने लगाया और जब मैंने वो लगाया तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा लड़का कुछ ऐसा कर रहा है। उनको उस दिन पता चला जब पड़ोस की आंटी ने मुझे देखा और देखा कि वहाँ पर लड़का कुछ बेच रहा है और वो मेरे पास आई और मेरे को पूछा कि बेटा आपको कोई घर पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ पैसों की ज़रूरत है जो आप ये शुरू कर रहे हो? क्योंकि उनके हिसाब से मैं इंजीनियरिंग में दाखिल हो चुका था, मैंने अपना फर्स्ट ईयर बीटेक का ज्वाइन कर लिया था जब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो उन्होंने जाके मेरे घर पे बताया और पूरे सोसाइटी में ये नाम उछल गया कि इन घावरी साहब का लड़का जाके ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया है, और सारे मोहल्ले में, सारे रिश्तेदारों में ये बिल्कुल बदनामी जैसी बात घूमने लग गई। तो बहुत ही उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। उनको लगा यार हमने इतना इसको पैसा लगा के, इसको ट्यूशंस लगवा के, हमने IIT की कोचिंग दिलवा के, एक बीटेक के कॉलेज में इसकी एडमिशन करवाई है, और ये क्या अनाप शनाप कर रहा है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बहुत रोना धोना किया, बट मैंने उनको क्लियर कर दिया कि अब आपके पास ऑप्शन है, या मैं घर छोड़ दूंगा या जो मुझे करना है मुझे करने दो। इसके साथ मैं पढ़ाई को सफ़र नहीं होने दूंगा, और जितने भी मार्क्स हैं जो आपको चाहिए वो मैं डिलीवर करूंगा, और साथ के साथ जो मुझे करना है अपनी लाइफ में वो मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। तो ऐसे स्टार्ट हुई मेरे फर्स्ट बिज़नेस की, जहाँ पे मेरे रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, जहाँ पे मेरे पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, बट एक जो चाह थी कि कुछ कर दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, उसका सफ़र वो स्टार्ट हो चुका था। इसी बिज़नेस के प्रॉफिट से मैंने एक कार्ट की जगह दो डाली, दूसरी के बाद तीसरी डाली, और पूरे चंडीगढ़ में मैंने 10 कार्ट तक का बिजनेस बना दिया था।
इफ़ यू लाइक व्हाट यू आर हियरिंग एंड यू लाइक टू हियर मोर इंस्पायरिंग टॉक्स लाइक दिस, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द फॉलो बटन एंड द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। फ्रॉम स्टार्टिंग अ स्मॉल फास्ट फूड स्टॉल टू co-founding द थर्ड यूनिकॉर्न, यू मस्ट हैव लर्न्ड सो मच अलॉन्ग द वे। Can you tell us a little bit about how you grew your business and stayed ahead of the curve?
तो 2010 में ये business grow करने के बाद मुझे लगने लगा यार ये business बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर भी ऐसा business था जहाँ पे बहुत सारे moving parts थे, बहुत ज़्यादा operational liabilities थी। तो मुझे लगा कि कोई ऐसा business कैसे किया जाए जो बहुत बड़ा हो सकता है, जो इस scale को पार कर सकता है। तो मुझे एक टाइम के बाद इस बिज़नेस में वो मज़ा नहीं आने लगा, कि ऐसा लगा कि यार क्या मैं फंस गया हूँ, क्या मुझे कुछ ऐसा करना है जो इससे भी बड़ा हो सके। फिर मैं दोबारा से अपने वाइट बोर्ड पर गया कि आज मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, आज मेरे पास कितना टाइम है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब तक मेरी इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, और मेरे पास दो रिसोर्सेज थे, मेरे पास टाइम था, और दूसरी चीज़ थी मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री। तो उस टाइम की बात है जब 2013 में टेक का रेवोल्यूशन आ रहा था, देर वर मैनी टेक कंपनीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया जो बहुत ग्रो कर रही थी। देर वर एग्जांपल्स लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो बहुत ज़्यादा पैसा रेस कर चुकी थी और बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी थी बहुत छोटे टाइम में। तो मुझे लगा अगर मैं टेक में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो इसको एज अ रिसोर्स मुझे यूज़ करना चाहिए और इसके अराउंड कुछ बिल्ड करना चाहिए। तब मुझे लगा कि अब ये वाला फूड का बिज़नेस छोड़ के मुझे कुछ टेक में करना है, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई अगले सफ़र की, जो था टेक के स्टार्टअप्स। तो दोस्तों, जब मैं 2013 में ग्रेजुएट हुआ तब मेरे पास सिर्फ तीन रिसोर्सेज थे। एक थी मेरी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा मेरे पास था फुल टाइम, और थर्ड मेरे पास रिसोर्स था थोड़े बहुत जो पैसे मैंने पिछले स्टार्टअप से कमाए थे। तो मैंने अपना अगला स्टार्टअप स्टार्ट किया जो ई कॉमर्स डोमेन में था। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, और वो मुझे बाद में बंद ही करना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल भी स्केल नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी टेक ऑफ नहीं हुआ। बट फिर मैंने एक और स्टार्टअप स्टार्ट किया उसी से लर्न करके कि एक टेक्नोलॉजी के बिज़नेस को कैसे बिल्ड करते हैं। फिर मैंने एक चैट एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन स्टार्ट की। तो वो एप्लीकेशन टू माय सरप्राइज विद इन 5 days वो 1 million मैसेजेस एक्सचेंज हो गए उस प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे लगा मैंने कुछ बड़ा फोड़ दिया टेक्नोलॉजी में, एंड दिस कंपनी कैन ग्रो रियली रियली बिग। तो मुझे लगा अब इसको ग्रो कैसे करना है, मुझे लगा कि मुझे जाके इस पे फंडिंग उठानी चाहिए। तो मैं सीधा पहुँच गया बैंगलोर, कम से कम मैंने 50-100 इन्वेस्टर्स के सामने वो पिच दी सो दैट आई कैन रेज फंड एंड मेक दिस कंपनी एज बिग एज एनी अदर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप VC इन बे एरिया। जब हमने अपना सारा पैसा लगा दिया, जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत था कि वो भी ख़त्म हो गया, तो हमें वो स्टार्टअप बंद करना पड़ा। 50 इन्वेस्टर्स के पास अपना पिच डेक ले जाने के बाद, सबके दरवाजे खटखटाने के बाद जब फंडिंग रेज नहीं हुई और स्टार्टअप बंद करना पड़ा तो बहुत दुख हुआ। तो उस टाइम पे ठान लिया कि मुझे कुछ ऐसी कंपनी बनानी है जो फंडिंग के बलबूते पे ना बने, बट वो किसी तरह ऐसे बन जाए कि बिना फंडिंग के वो ग्रो भी हो सके और ना ही ग्रो हो, बहुत स्केल भी हो सके। तो उस टाइम पे मैं और मेरा को-फाउंडर हमने सोचा कि एक ऐसा आइडिया स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें किसी के दर दर दरवाज़ों पे जाके फंडिंग ना मांगनी पड़े और हम कल को ऐसी स्टेज पे पहुँचे कि हम खुद फंडिंग दे सकें लोगों को। जब हमने ये स्टार्टअप बंद किया, हमने ये सोचना स्टार्ट किया कि अब क्या किया जा सकता है टेक्नोलॉजी में। अब करना तो कुछ टेक्नोलॉजी में ही था और करना भी कुछ ऐसा था जिसमें फंडिंग ना रेज करनी पड़े, बट किया क्या जाए। तो मैं और मेरे कोफाउंडर हर रोज़ मीटिंग्स करते थे, कैफ़े में मिलते थे, बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस करते थे। तो ऐसे आइडिया डिस्कस करते 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 हमारे माइंड में आया कि हम कुछ टेक्नोलॉजी हमें बनानी आ चुकी है और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है अपने बिजनेसेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो हमने सोचा कि कुछ बिजनेसेस के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कि आपको कोई अपने बिज़नेस को ऑटोमेट करना है या एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है। तो हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया और 10 बिजनेसेस के पास जाने के बाद एक बिज़नेस ने हमें फाइनली एक प्रोजेक्ट दिया। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे फोर्थ स्टार्टअप की, जिसका नाम है कोडब्र्यू लैब्स। तो कोडब्र्यू लैब्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स बनाती है। तो ये कंपनी हमने 2014 में स्टार्ट की जब मैं सिर्फ 23 साल का हूँगा। तो आज की डेट में हमारी कंपनी कोडब्र्यू लैब्स 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। हमारी कंपनी के ऑफिसेज लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क और कनाडा में हैं और 600 एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक कंपनी प्रॉफिटेबल इतना बड़ा स्केल अचीव कर गई सिर्फ एक ही फंडामेंटल से, कि हमें कोई फंड रेज नहीं करना, हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है अपने दम पे जो स्केल भी हो सके, टेक्नोलॉजी में भी हो और एक कुछ इंटरनेशनल जा सके। तो ये कसक अभी भी दिल में रहती थी कि कुछ अभी बड़ा करना है। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो कोफाउंडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं योर स्टोरी और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स को पढ़ने लगा और मैंने देखा कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके यूनिकॉर्न्स बना चुके हैं, 40-50 हज़ार करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, बट अभी भी मैं उनसे काफ़ी पीछे था। तो मेरा दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लगा कि अब नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। तब मैंने एक लिस्ट बनाई ऐसे रोल मॉडल्स की जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बना दिए, यूनिकॉर्न्स बना दिए, एक के बाद एक यूनिकॉर्न बना दिया। तो मैंने उनकी लिस्ट बनाने के बाद उन सबको लिंक्डइन पे और ईमेल्स पे रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जर्नी भी आसान नहीं थी। मैंने 2020 में सबको पहले रीच आउट किया पर किसी का जवाब नहीं आया। तो 2021 के एंड में मुझे मौका मिला एक स्टार्टअप के साथ काम करने का जो फंडेड थी अश्नीर ग्रोवर से। तो मुझे लगा कि यार ये एक सीढ़ी है कि मैं अश्नीर ग्रोवर तक पहुंच सकता हूं, एटलीस्ट वो मेरी बात सुन सकते हैं। मैंने उनको काफ़ी रीच आउट करने की कोशिश की 1.5-2 साल में। मैंने लिंक्डइन पे मैसेज डाले, ईमेल किया, बट कुछ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब मैंने इस स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट किया तो उनके फाउंडर के थ्रू मेरी इंट्रोडक्शन हुई अश्नीर ग्रोवर से। जब उनके साथ इंट्रोडक्शन हुई तो मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मैंने क्या कंपनी बनाई है और अब मेरा क्या काम मैं कर रहा हूँ इस करंट स्टार्टअप में। जब उनको समझ आया कि हाँ कि इस लड़के ने कुछ बनाया है अपनी ज़िंदगी में और ये कुछ कर सकता है, तब हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई बहुत आइडियाज़ पे कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है और क्या क्या किया जा सकता है। तो एक दिन उनके साथ जब मेरी मीटिंग थी, मैंने उनको कहा कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं चंडीगढ़ में एक बड़ी कंपनी बना चुका हूँ बट अभी भी ये मेरे दिल में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया कि मैं एक यूनिकॉर्न बनाना चाहता था बट वो अभी तक नहीं बना। तो उसको बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि बेसिकली मैं आपसे कुछ सीखूँ, मैं आपके साथ काम करूँ, तो मुझे अपने कोई भी स्टार्टअप में या अपनी कंपनी में रख लो, मैं आपके साथ एज ए इंटर्न भी काम कर सकता हूँ, आपके साथ एज ए असिस्टेंट भी काम कर सकता हूँ, बट मुझे अपने साथ जोड़ लो। तो ये मेरी पिच थी। मैंने अपने आप को एज एक प्रोडक्ट ही प्रेजेंट कर दिया कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैंने ये चीज़ बनाई है और मैं ये बनाना चाहता हूँ और मैं आपके साथ किसी भी फॉर्म में जुड़ना चाहता हूँ। तो ये एक पिच लेके मैं अश्नीर ग्रोवर के पास गया। तो जब उनके माइंड में कोई आइडिया आया, जब उनको कुछ नया स्टार्ट करना था, जब उन्होंने थर्ड यूनिकॉर्न रजिस्टर कर ली, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मैं मिलना चाहता हूँ और मैं इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ डेफिनेटली जुड़ना चाहूँगा, आप किसी भी आइडिया पे काम कर रहे हो, मेरा सिर्फ एक ही एम है, मुझे लर्न करना है कि एक बहुत बड़ी कंपनी कैसे बनाई जा सकती है। तो उन्होंने मुझे बेसिकली ऑफ़र किया कि मैं उनके साथ एज अ कोफाउंडर आ जाऊँ। तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना सच हुआ जिसके पीछे मैं 2 साल से लगा हुआ था कि मैं किसी बड़े फाउंडर के साथ काम कर सकूं और एक यूनिकॉर्न बना सकूं। तो ऐसे मैं बना 3rd यूनिकॉर्न का co-founder।
असीम, there's a part of your story that may puzzle our listeners. You had a profitable business, however, you decided to close it down. What was your reason और फिर आपने क्या किया?
तो 2013 में जब मैंने ये डिसाइड किया कि ये बिज़नेस, जो फूड का बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, वो उतनी स्पीड पे स्केल नहीं हो पा रहा, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। जैसे वो स्टॉल और कियोस्क मॉडल वाला बिज़नेस था, वो उसके पास उस बिज़नेस में कोई प्रॉपर आउटलेट्स या शॉप्स नहीं थी, तो वहाँ पे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर आके पैसे मांगता था या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उस स्टॉल को उठा के ले जाते थे। तो मुझे लगा ये बिज़नेस अब स्केल नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से मैं चाहता हूँ। तो मैंने एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस को मैंने बंद कर दिया और मैं ये सोचने लगा कि अब लाइफ में और बड़ा क्या किया जा सकता है।
थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। Don't forget to click the follow button and the bell icon to keep up with Josh. You could also click the 3 dots and then the share button to send a dose of inspiration and Josh to your friends and family. We hope that today's episode encourages you to take action and achieve your goals, and we'll see you in the next episode of the Josh Talks podcast with me, Siddhant Nag.